ओम शांति। आज का टॉपिक है दुविधा में दोनों गए, राम मिला न राम मिला न माया मिली। तो हमें ये विचार आया कि जब ये टॉपिक सुना तो हमें लगा कि ये किसके लिए होगा। माना कि उसे राम भी चाहिए, अगर राम नहीं मिलता तो माया से भी काम चला लेंगे। तो ये स्टेज हर एक ब्राह्मण के लिए अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार कहीं ना कहीं पर आती है कि जब उसे दुविधा होती है या क्लियरिटी नहीं होती है पुरुषार्थ में। तो अगर देखा जाए शुरू की स्टेज, जब कोई नए नए ज्ञान में आते हैं तो उस समय कहाँ कहाँ दुविधा आती है उन्हें, कहाँ कहाँ पे ऐसा लगता है कि ये माया। तो कहीं ना कहीं इसमें हम समझते आकर्षण भी होता है कि अगर वो राम को नहीं प्राप्त कर पा रहे या बाबा से वो खुशी वो शांति वो सुख नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फिर लौकिक या सांसारिक आकर्षणों में आकर्षित होते हैं। तो शुरू की जो स्टेज होती है तो वहां दुविधा कहाँ कहाँ आती है सब बताएंगे, क्योंकि हमने ज्यादा कुछ तैयार नहीं किया है। बैलेंस के नाम पे मतलब दुविधा आती है, बैलेंस कैसे रखे। और कोई बात, ज्यादातर देखा जाए तो हर एक का अपना अपना होता है। कोई को जब शुरू में ज्ञान में आते तो उनको लगता है कि हमें आगे पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हम जिस एक सेंटर पे थे पूना में, तो वहां एक कुमार था, वो कहता था कि हम वो कलेक्टर के लिए पढ़ाई पढ़ रहा था, तो कह रहा हमें ये लगता है कि अगर हम नहीं बन पाए, क्योंकि उसके लिए उसने मुरली योग और सेंटर पे आना सब कहीं ना कहीं वो थोड़ा रुका हुआ था, तो कह रहा था कि अगर नहीं कर पाए तो फिर ये भी चला जाएगा। तो वो कहता था कि हम चाहते हैं कि हम बन जाए, मीन्स कहीं ना कहीं या तो बाबा मिले, और बाबा नहीं मिलता तो कम से कम वो भी मिले, कि ऐसा ना हो कि उससे भी हाथ धो बैठे और ये भी चला जाए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ दुविधा है। और क्या कहेंगे, शुरू की जो स्टेजेस होती हैं की भी चाहिए, माना भक्ति अगर छूट जाएगी तो। हाँ, ये भी होता है कि कई बार सोचते कि इससे तो अच्छा भक्ति थी, कितना आनंद आता था, प्रेम के आंसू आते थे, अभी तो वो भी बंद हो गए यहाँ। एक माता कह रही थी कि जब हम भक्ति में थे बड़ा मजा आता था, हम चार चार घंटे सत्संग सुनते थे, कीर्तन करते थे, और कभी कभी हमारे अंदर देवी जी भी आ जाती थी, और जब से ज्ञान में आए हैं तो एक घंटा भी मुरली नहीं सुनी जाती है, नींद आने लगती है। हाँ। माया आ गई है। तो और कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती है, वो इजी होता था, ये मुश्किल हो गया, मुश्किल लगता है। बाबा दिखाई क्यों नहीं देता। लेकिन देखा ये भी जाता है ना, जो चीज हमारे पास नहीं भी है, हमसे दूर है, उससे तो और ज्यादा प्यार होता है, वो दिखाई तो नहीं देता है ना। लेकिन विशेष रूप से देखा जाए जब हमको दोनों चीजें चाहिए होती हैं और दोनों में से एक ही मिल सकती है। अगर हम कहीं शॉप पर भी जाते हैं और वहां पे भी ऐसा हम देखते हैं कि हमें अगर ये चाहिए और उससे भी बेटर कुछ मिल रहा है या हमारा बजट नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों को चूज करना चाहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए। ऐसे ही क्या है कि जब बाबा के लिए हम, क्योंकि आत्मा जो है उसे सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, क्योंकि उसका ये कह सकते हैं आत्मा का भोजन है। और अगर मान लो किसी को खाने को नहीं मिलता है तो क्या करता है, कुछ भी दे दो, कैसा भी दे दो, एक दिन का बात का भी दे दो, चलेगा। तो जब कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा से वो चीज नहीं प्राप्त कर पाती है, वो नहीं ले पाती, वो अनुभव नहीं कर पाती, तो फिर क्या करेगी, आसपास ढूंढेगी ना कहीं ना कहीं, शायद ये भाई से मिल जाए, ये भाई थोड़ा लगता शक्तिशाली है, पावरफुल है, इसने बहुत ले रखा है, ये दीदी से मिल जाए या इससे मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हम आधार बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो आधार कब तक चलेंगे, कोई व्यक्ति अभी वो किराए के मकान में कब तक रहेगा? एक महीना, एक साल, दो साल, फिर उसे भगा दिया जाता है, फिर ढूंढेगा दूसरा मकान। अभी अपना हो जाता है तो उसके लिए, अपना होने के लिए कनेक्शन वो परमात्मा से रखना होगा ना। वो टेस्ट जब तक उसके कनेक्शन उससे क्लियर नहीं होगा, जैसे अभी थोड़े दिन पहले की मुरली थी ना बाबा की इसी बात पे, कि अगर कोई बात आ जाती है, विघ्न आता है, सरकम ट्रांस आता है, तो क्या करो? किसी से सहयोग ले लो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन होता ये, हम सहयोग लेते ना तो फिर उसके ही अधीन हो जाते, उसी पे ही आधारित हो जाते। आगे बढ़ना वो एक अलग चीज है, और उसके आधार बना ले। फिर बाबा ने ये भी बोला कि आत्मा में कमजोरी होने के कारण इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो डायरेक्ट परमात्मा से वो ले सके। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, प्रेम का सागर, शांति का सागर खुद हाजिर है और उसने खुद हमें सिलेक्ट किया है। उसके बाद भी हमको क्या होता है, हम उससे नहीं ले पाते, इसीलिए हम कहीं ना कहीं अपना वो, जैसे नहीं बैसाखी चाहिए होती है, उसके बिना नहीं चल पाते। अगर एक बैसाखी गायब तो क्या होता है, रुक जाते, स्टॉप। तो कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में, हमारे लक्ष्य को लेकर के हमारे कितने ऐसे आधार हैं, तो वहीं पे ही जब फेल होते हैं या वो चीज रुक जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे बाबा का साथ छूटा या वो चीज क्लियर नहीं हो रही है, और ऐसी जगह पे फिर दुविधा, लटक जाते हैं, क्योंकि स्टॉप हो गया ना। जैसे रास्ते में चल रहे हैं और एक ही रास्ता, उस पे कई सारे मोड़ हैं, तो डाउट आता है इधर मुड़ना है या उधर मुड़ना है। अगर क्लियरिटी है कि मुझे इधर ही जाना है तो हम कम समय में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन समय ज्यादा भी हो और रास्ता पता ना हो, फिर क्या होगा, भटकना शुरू हो जाता है। तो ब्राह्मण कहाँ कहाँ भटकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माया और बाबा दोनों ही शक्तिशाली हैं। उसके पास भी सुख के आकर्षण बहुत सारे हैं, तो बाबा के पास भी हैं। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, बड़ी सस्ती मिलती है और सोने की जैसे चमकती है, तो क्या होता, फट से उसको ले सकते हैं और हर कोई ले सकता है, उसे सस्ता होता है और जल्दी मिल जाता है। मगर अगर सोना खरीदना हो तो क्या होता है, उसके लिए नोट ज्यादा चाहिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा से अगर वो कनेक्शन, उस परम आत्मा से वो क्वालिटी चाहिए जो आत्मा कहीं और ढूंढ रही है, तो उसके लिए वो कनेक्शन, वो क्लियरिटी होनी चाहिए। और क्या कहेंगे, ऐसी दुविधाएं कब आती है हमारी लाइफ में। अब इससे आगे की स्टेज देखें तो कई जगह ऐसा भी होता है कि अगर श्रीमत पे हम चल रहे हैं, अगर एक चीज को किया तो दूसरी चीज से चली जाती है, लगता है कि शायद ये भी फिर गलत हो जाएगा, अगर नहीं किया तो भी लगता है गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ लॉ, कुछ यज्ञ के रूल्स ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि अगर ये करेंगे तो सही होगा, और अगर वो कर दिया तो दूसरी रीति से भी वो गड़बड़ हो जाएगा। तो माना हमारा फिर वहां पे क्या करना चाहिए, अगर कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि ये राम है या माया है। हमको एक भाई ने एक बात बोली थी कि साकार बाबा से, एक भाई ने एक प्रश्न पूछा था कि बाबा अगर कभी ऐसा हो कि श्रीमत पे चल रहे हो और क्लियरिटी ना हो रही हो कि श्रीमत है या नहीं है, तो बाबा ने बहुत अच्छा उससे उत्तर दिया था, जिस बच्चे की एकाग्रता अच्छी होगी, जिसके अंदर प्योरिटी क्लियर होगी, तो उसको बाप स्वतः टच कर देगा। क्योंकि माया कितनी भी शक्तिशाली हो, वो फुल उस रूप में नहीं आएगी, 1% कहीं ना कहीं वो छूट जाएगी, और उस 1% से ही वो हम कैच कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान क्लियर हो और योग की पावर क्लियर हो तो हम कहीं ना कहीं इस दुविधा से सेफ रह सकते हैं। और भी कोई बात क्या, साथी चाहिए?
नहीं, सहयोग चाहिए,
सहयोग चाहिए। हाँ, ये भी होता है, किसी ने साथ दिया कि तो फिर उसके पीछे भी पड़ जाते हैं, मतलब पीछे पड़ना मीन्स कि उसी से लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उतनी क्वालिटी आत्मा में नहीं है कि हम पहले खड़े हों और उससे ले सकें। तो सहज रीति मिल गया तो फिर उधरी से चालू कर देते हैं, जैसे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना वो बहुत सस्ती मिलती है, 4 दिन उसका टेस्ट भी ले लिया तो वो एक आदत जैसी पड़ जाती है। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जाए, वो कौन सी विधि है जिससे हमारा ये माया की और बाबा की है इसमें हम अंतर समझ सकें कि ये माया है और ये श्रीमत है या ये राम है। क्योंकि कई बार चलते चलते एक ऐसी अवस्था आ जाती है, कुछ शायद पिछले साल की मुरली में था जिसमें बाबा ने बोला था कि उस दुनिया से निकलते हैं इस दुनिया में आते हैं, फिर इस दुनिया में भी सेट नहीं हो पाते हैं तो बीच की स्थिति हो जाती है, और बीच की स्थिति तो बहुत खराब होती है। अगर सब्जी कच्ची है तो यूज हो सकता है, अगर पूरी पक गई है तो भी यूज हो सकता है, लेकिन ना तो कच्ची हो ना पक्की हो तो क्या करेंगे, उसे कोई यूज नहीं है। लेकिन कच्ची जो आधी होगी उसको तो नहीं यूज कर सकेंगे ना, हाँ तो वो करना पड़ेगा ना। या फिर कहीं ना कहीं कोई भी अधूरी चीज वो कोई भी यूज की नहीं होती है। जैसे जानकी दादी ने ओम शांति भवन में बोला था ना कि आटे में एक बार पानी मिल गया, सान दिया, उसको तैयार कर दिया तो वापस वो वैसा नहीं हो सकता। ऐसे उस दुनिया से जब निकल आते हैं तो बाबा ने बोला था कि ना तो उस दुनिया में सेट हो पाते ना इस दुनिया में सेट होते हैं। फिर बोला था वो जैसे कैंसर का पेशेंट हो जाता है। त्रिशंकु आपका टॉपिक तो ये त्रिशंकु वाली स्थिति हमारी ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, अपने आप ही हो जाएगी। शंका खत्म कर देनी चाहिए। और कोई बात? कदम आगे बढ़ा लिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन आगे भी आ जाती ना माया, वो पीछे नहीं रहती है, आगे भी खड़ी होगी, दाएं भी खड़ी हो जाएगी, बाएं भी खड़ी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? हाँ हाँ, ये बात है, जिसके बुद्धि में उसका लक्ष्य समाया होता है फिर उसे कोई चीज नहीं दिखता, उसको बस एक ही चीज दिखती है, वो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है, वहां जाना है। अभी किसी को मान लो कहीं से मधुबन आना है तो उसकी बुद्धि में एक ही संकल्प रहता है, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, फिर उस समय से लेकर या उस रास्ते से लेकर कुछ भी उसे मिलता है उसकी बुद्धि वहां जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि में एक ही चीज बैठ गई है, लक्ष्य कि वहां जाना है। और अगर माना अगर लक्ष्य नहीं होता है तो मतलब फिर तो यहाँ भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। जैसे कई लोग घूमने निकलते हैं ना तो कहीं भी चले जाएंगे, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, फिर रास्ता भटकेंगे। और अगर एक जगह जाना है तो उससे कम समय में भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि क्लियर है कि हमको वहां जाना है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए पुरुषार्थ जीवन का कि करना क्या है, क्योंकि जब ये यज्ञ की स्थापना हुई है तो किस कार्य के लिए हुई है, क्या हम वही लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं लक्ष्य तो लिया था ये कि ये करना है और धीरे धीरे और सारी चीजें देखी तो लक्ष्य चेंज हो गया। जैसे कुछ लोग कुछ चीजें लेने जाते हैं, सोच के जाते हैं ये लेके जाना है, लेके कुछ और आ जाते हैं, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और कोई बात?
बाबा ने एक मुरली में बोला था दुविधा, दो नाव में पांव रखे तो पांव एक बार चीर पड़ेंगे।
हाँ, दो नाव में पांव रखी तो वो भी ऐसी बात होगी कि ये वाला भी चाहिए तो वो वाला भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई को भूख लगी हो, अगर उसने अच्छे से खाना खाया हुआ तो फिर उसे दोबारा कोई और चीज नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भूख तृप्त नहीं हुई है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे बताया ना, आत्मा बिना सुख शांति के नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं जो हमने ये सारे आधार बना रखे हैं अपने, इससे चाहिए उसे। और जब वो आधार हटते तो स्थिति कैसी हो जाती है? त्रिशंकु भी एक अलग ही चीज होता है, भिखारी जैसी स्थिति हो जाती है, चाहिए चाहिए चाहिए। कितना सोचने की बात है, जिसका बाप सर्वशक्तिवान है, प्यार का सागर है, गुणों का सागर है, और उसके रहते हुए हम किसी और से मांग रहे हो, तो कितनी, इससे तो अच्छे वो कहेंगे ना भक्ति मार्ग वाले, वो फिर भी कितना एक दिन देख रहे थे, वो शैलिन भाई भी कह रहे देखो इनको कितना नशा रहता है, कितना मगन होके चलते हैं। और कोई बात
चाहिए,
सब चीजें चाहिए, बल्कि भक्ति में इतना चाहिए नहीं था, केवल एक वो चाहिए। अगर भक्ति में यात्राएं भी करते थे, देखो कभी हमने देखा वैष्णो देवी की जो यात्रा करते कई लोग, वो लेट लेट के चलते हैं, उतने से वो पूरा रास्ता तय कर लेते हैं, और उसके बाद जब पहुंचेंगे वो उनकी स्थिति देखने वाली होती है। और यहाँ तो अगर गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, तो फिर कैसा नहीं जाना, पानी बरस रहा है तो नहीं जाना है। हाँ सहज मार्ग है तो कठिन क्यों करें, कहीं भी बैठ के याद कर लो, बंधन नहीं है। तो वैसे तो ये अच्छी बात है, बाबा से मिलने का बंधन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बंधन बनाने पड़ेंगे हमें अपनी सेफ्टी के लिए, नहीं तो माया ऑलरेडी हमें किसी ना किसी लपेटे में लपेट लेगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम ऐसा भी समझते, लक्ष्य क्लियर हो और नशा जो है वो हमारा पूरा, जैसे वो विश्व किशोर भाव का था ना, निश्चय अटल नशा संपन्न था, इसलिए बाबा ने बोला कि उनके लक्ष्य में और जो रखा था उसमें समानता आ गई। हमारा अभी थोड़े दिन पहले एक मुरली में भी पढ़ रहे थे, तो बहुत पुरानी मुरली है वो, यहाँ शायद सिंध के या कराची की होगी, उसमें बाबा ने बोला था कि आप लोग रोज अपने नशे को चेक करना, एक दिन ऐसा समय आएगा जो ये सर्वशक्तिवान स्वयं आपके नशे को, निश्चय को हिलाएगा, इसलिए अपने निश्चय पे, नशे पे हमेशा कायम रहना। तो देखो सोचने के, हाँ चैलेंज तो वो तो लेगा ना, सिलेक्शन हो रहा है ना, इतनी बड़ी चीज के लिए ऐसे ही ले लेगा क्या, क्योंकि वहां से निकाल के तो यहाँ तक उस लायक तो थे कि उस दुनिया से निकल के अब इस दुनिया, अब यहाँ से आगे तक जाने के लिए वो पुरुषार्थ करना होगा। और कोई विशेष बात, ब्राह्मण जीवन का महत्व हमेशा याद रहे तो सेफ रहेंगे। और एक चीज ये भी है कि बाबा से जो कनेक्शन है वो बहुत नजदीक का, बहुत क्लोज होना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर दूर का कनेक्शन होगा तो टाइम पर फिर जब हमें कोई चीज की आवश्यकता होगी नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं फिर आसपास ढूंढना शुरू कर देंगे। जब कोई विघ्न आता है, सरकम ट्रांस आता है, ये तो रहता है बाबा साथ है, चिंता मत करो बच्चे, बाबा तो बैठा हुआ है, लेकिन अंदर ही मन मन में क्या चलता है, ये भाई कर सकता है, इसके पास है ऐसा, वो दीदी से बात करते वो कर सकते हैं। एक रीति तो बाबा पे भी निश्चय है, और दूसरी रीति कहीं ना कहीं हमको उससे ज्यादा दूसरों पे निश्चय है, ये तो कर ही देगा, इससे तो हो ही जाएगा। टचिंग एक अलग चीज होती है, और एक आधारित हो जाना वो एक अलग बात हो जाती है। तो टचिंग तो वो क्लियरिटी होगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, वो न्यारेपन की स्थिति खुद रहेगी। और एक उस पर फिदा हो जाना कि यही कर सकता है, यही कर सकता है, वो एक अलग चीज। हालांकि करेगा तो कोई ना कोई आत्मा निमित्त बनेगी, लेकिन वो जो एक होता ना आधार बना लेना पहले से, कोई तो मदद के लिए चाहिए, कोई मदद करता ही नहीं है, तो उसका आधार लिया ही नहीं, दुविधा हो गई। लेकिन इसमें भी ये बात तो सही है कि कोई ना कोई आत्मा तो, लेकिन उतनी क्लियरिटी होनी चाहिए ना कि ये बाबा की टचिंग है। जैसे दादियां शुरू में होती थी तो उनको तुरंत बताती थी कि कई बार कोई मदद देता था तो हमको ऐसा लगता था कि नहीं इसकी मदद नहीं लेनी है, मना भी कर देते थे। और कई बार खुद आता था तो वो दादियां कहती थी कि हमको ये रहता था कि नहीं ये भाई का नाम बाबा ने हमको बोला संदेश में या ऐसे टचिंग में भी किसके पास। जैसे हृदय पुष्पा दादी के अनुभव में ना, जब बैंगलोर गई तो उनको मामा को आना था तो उनको खुद क्लियर था कि कहाँ जाना है, किस जगह पे जाना है, किससे बोलना है कि ऐसा ऐसा कार्य कराना है, तो क्लियरिटी थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आधार नहीं, लेकिन उसका आधार ले करके या उस परमात्मा से वो चीज लेकर के फिर कोई ना कोई आत्मा निमित्त बनती तो अलग बात है, लेकिन जब हम खुद से ढूंढना शुरू करते हैं और अगर उससे नहीं काम होता है तो उसके फिर पीछे पड़ेंगे। और कोई बात, वो आत्मा समाधान कर सकती है। हाँ वो स्टेज है तो अच्छा है, अगर वो अपना बाबा की टचिंग हुई और फिर उसके बाद काम हो गया तो वो एक अलग चीज है। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक और बात भी है कि बाबा ने ये भी बोला है कि अंत समय के लिए हमारी लाइन बहुत क्लियर चाहिए। उस समय हो सकता है हमें कोई आत्मा का भी नहीं मिल पाएगा, तो क्या इतनी क्लियर है वो लाइन कि हम एकदम कोई डिसीजन ले सके? क्योंकि अब जो हमारे पास आत्माएं आने वाली हैं, जो अभी इतना समय नहीं होगा कि हम उनको थोड़ा संबंध संपर्क में ला करके फिर वो माना कि चेक कर सकें कि हाँ ये आत्मा सही है नहीं है, क्योंकि अब जो होगा उसमें क्विक डिसीजन लेना होगा। परखने की शक्ति बहुत पक्की चाहिए होगी, क्योंकि माया और ये राम ये दोनों एक समान ही दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे वो दिखाते ना रावण को मारते तो एक साथ दस दस रावण, अभी उसमें ओरिजिनल कौन सा है, किसको तीर लगाना है, किसको लगाना है, एक ही तीर लगाएंगे सबको लग जाए, ऐसे जो ओरिजिनल होगा वो चला जाएगा, ओरिजिनल को लगेगा। ये बात सही कही, अगर लाइन क्लियर होगी तो तीर ओरिजिनल को ही लगेगा। क्योंकि हम सेंटर पे भी देखते थे, कभी कभी कुछ ऐसी भी आत्माएं आती थी, इतना टाइम नहीं होता था कि हम दीदी से पूछें या उनसे बात करें, तुरंत वो ऐसे कुछ ना कुछ होगा कि तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा और फिर क्या करेंगे ऐसे समय पे। तो कहीं ना कहीं वो बाबा से कनेक्शन ऐसा हो कि माया का टेस्ट, यूं कहे कि माया हमारे ऊपर अपना असर ना दे सके, तो उसके लिए संबंध रिलेशन बाबा से बहुत नजदीक का क्लोज का होना चाहिए। ऐसे होता ना कभी कोई सरकम ट्रांस आया, कोई बात आई तो हमको कोई व्यक्ति पहले याद आता है, ये भाई मदद करेगा। क्यों याद आता है? क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं बहुत नजदीक होता है, की होती है, और ये उसकी जो पावर्स है उसका हमें अनुभव भी होता है क्योंकि यही व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो अगर वो कनेक्शन किसी आत्मा के थ्रू अगर हमने परमात्मा से जोड़ रखा होगा तो सबसे पहले कौन याद आएगा? वही याद आएगा, नहीं तो लास्ट में भी क्या होगा, कुछ होगा तो फिर वो व्यक्ति याद आ जाएगा, तो बाबा तो बीच में से हट जाएगा। और कोई बात विशेष? करेक्ट, वही देगा। लेकिन ये स्थिति इतनी सहज नहीं है कि ऐसे बैठे बाबा के कमरे में और फटाफट बाबा को बोला ऐसा 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 ये करना है, क्योंकि क्या है ना हमारी जो बुद्धि है इसमें इतना कुछ चलता रहता है, इतना चलता रहता है। एक मुरली में ये भी फिर बाबा ने बोला है, कहा है कि कई बार जब बाबा से बच्चे बात करने बैठते या किसी चीज का सर्वेशन लेना चाहते हैं तो उनकी बुद्धि में इतना सारा कुछ समाया हुआ होता है, वो अपने मन का एक आंसर पहले से लेके ही बैठे होते हैं, वो सोचिए बाबा नहीं टच कराया है। वो तो हर एक की अपनी अपनी अवस्था और अपनी अपनी स्टेज के ऊपर है। तो यहाँ मेन बात है कि बाबा का हमें बहुत क्लियर अनुभव होना चाहिए तभी, क्योंकि अब देखो अब जो बाबा का पाठ चल रहा है हर एक आत्मा के लिए बाबा का अनुभव अलग अलग है। इस समय वैसे तो देखा जाए मुरली तो सबको मिल जाती है, लेकिन अगर एक रीति से देखो वो जो आंखों की भाषा है अब उसे कौन पढ़ सकता है, जिसको उसका बहुत अभ्यास होगा और जिसने वो शब्दों को ही पढ़ना सीखा होगा तो वो उसके लिए मुरली वहीं से स्टार्ट है। वो आंखों की लैंग्वेज कहाँ से समझेंगे, वो सूक्ष्म वतन की भाषा कहाँ से समझेंगे। अब तो धीरे धीरे जैसे सब ये वाणी का पार्ट कम हो रहा है तो वो भाषा कैच करनी आती इशारों वाली, किसी ने इशारा दिया और वो भी कौन कैच कर सकता है जो किसी के बहुत नजदीक हो, हर कोई नहीं कैच कर सकता है। जैसे एक बहन थी युगल आते थे पूना में, उसके युगल को बोलना नहीं आता था तो हम वो क्या इशारा करता था ऐसे ऐसे ये सब और हम लोग नहीं समझ पाते थे, केवल उसकी युगल ही समझ पाती थी और एकदम करेक्ट समझती थी। तो इतना वो साइलेंस की जो वो भाषा बोलता है जब वो आता है तो वो क्या हम समझ सकते हैं? देखा हमें पता था आप यही बोलोगे बाबा की युगल बन जाए, क्योंकि वो बहुत नजदीक है ना, और जो दूर रहता है तो उसे अभी जो नया आके वो उसको बिठा दो तो उसे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है और सब क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए, क्योंकि बाबा और हमारे बीच में माया के बड़े बड़े अलग अलग रूप हैं, रॉयल भी हैं, क्लियर भी हैं, कई जगह तो ऐसा होता हमें खुद भी पता रहता है ये माया है, फिर भी कहीं ना कहीं हम उधर बार 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 जाते हैं, सीखते भी नहीं है और गिरते भी हैं, फिर उठते फिर उधर ही जाते हैं। वो जैसे विक्रम बेताल वाला, उसको बोला है कि चुप रहना, फिर भी बोल देता है, ऐसा भी होता है ना पुरुषार्थ में। और पूरा करें, ओम शांति।